कहीं मैंने सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके कोई गलती तो नहीं कर दी? इनाया की जो कंडीशन थी, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को बीच में नहीं लाता तब भी उसे मजबूरी में मुझसे शादी करनी ही पड़ती। बस मुझे उसे थोड़ा फोर्स करना होता, शायद तब उसके दिमाग में ये अलग होने वाली बात नहीं होती तो उसे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन अगर मैं अपनी पावर का यूज़ करके उसे खुद से शादी करने के लिए फोर्स करता तो उसके सामने मेरी गलत इमेज बन जाती। शायद मजबूरी में वो मेरे साथ इस रिश्ते में बन तो जाती पर उसे ठीक से निभाती नहीं। उस सिचुएशन में सबके सामने हमारे रिश्ते की सच्चाई आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और मेरा बना बनाया प्लान बर्बाद हो जाता। आई थिंक मेरा डिसीजन सही था और अब मुझे बस इनाया के दिमाग से ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात निकालनी होगी जो उसे मेरे तरफ बढ़ने और इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने से रोक रही है। मुझे उसे टाइम देना होगा, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। कायरफ खुद से ही बातें कर रहा था। उन आर्ग्यूमेंट्स के बाद रूम में गहरा सन्नाटा पसरा था। दोनों बेड के दो कोनों में बैठे थे। इनाया अपने ही ख्यालों में खोई थी। मुझे इसका बिहेवियर इतना अजीब क्यों लग रहा है? इसने कितनी आसानी से कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ देगा और उसके बाद मुझे हमेशा उसके साथ रहना होगा, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ बिताने में इसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसने तो कहा था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की क्योंकि किसी अनचाहे रिश्ते में नहीं बनना चाहता था, तो क्या अब वो मेरे साथ रहना चाहता है इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को नॉर्मल शादी मानकर निभा रहा है और मुझसे भी यही चाहता है? क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है? क्यों ये इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को रियल मैरिज मानता है, मेरे करीब भी आ जाता है? क्या ये मुझे लाइक करने लगा है इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को भुलाकर इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेरी खुद की फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इसका बिहेवियर मुझे और ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहा है। बप्पा, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? हर बार जैसे इनाया मदद के लिए सीधे अपने बप्पा के पास पहुंची, पर उनसे कुछ बात करती उससे पहले ही कायरव की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इन बेकार की बातों में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने, अब टॉपिक पर आओ और वो बात करो जो हम करने वाले थे। इनाया ने चौंकते हुए सर घुमाया और कन्फ्यूज निगाहों से उसे देखने लगी। मैं उस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिस पर कार में हमारे बीच डिस्कशन हुआ था, कि मेरे दादाजी ने, उनके पापा ने जो भी खोया सब वापस हासिल कर लिया था। तब तुमने कहा था कि सब ऐसा नहीं कर सकते, कुछ की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होती। किसकी बात कर रही थी तुम? इनाया को एकदम से वो बातें याद आ गईं। चेहरे पर अजीब से भाव उभरे, आंखों में अजीब सा दुख और मायूसी झलकने लगी। दिल कुछ लम्हों के लिए किसी और ही दुनिया में खो गया। अपनी बात कर रही थी मैं। मेरी आई भी अच्छी फैमिली से थी। उनका नाम अमाया देशमुख था। साउथ मुंबई के मालाबार हिल्स में उनका खुद का घर था, बहुत बड़ा, शायद तुम्हारे जितना नहीं पर जहां तक मुझे याद है बड़ा महल जैसा घर था। और मेरे नाना नानी की वो इकलौती औलाद थी। उनका सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ आई के नाम था। मैंने अपनी आई की डायरी में पढ़ा है, मेरी आजी और आजूबा उनसे बहुत प्यार करते थे। आई उनकी लाडली थी, राजकुमारी जैसे पाला था उन्होंने उनको। लेकिन फिर एक हादसे में वो दोनों चले गए। आई के चाचा चाची अकेली लड़की कैसे रहेगी बोलकर जबरदस्ती आई के साथ रहने लगे। उनकी नज़र आजूबा के बिजनेस और उनकी प्रॉपर्टी पर थी। आई अपने आई बाबा के खोने के बाद सदमे में थी और इसी बात का फायदा उठाकर वो सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहते थे। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं होने दिया। वो आजूबा की कंपनी में काम करते थे, आई से पहले भी एक दो बार मिले थे। जब आई बिल्कुल टूट गई थी तब उन्होंने उनको सहारा दिया। धीरे धीरे आई पहले जैसी हो गई। उस टाइम बाबा ने उनका बहुत साथ दिया था, इमोशनली सपोर्ट किया था उन्हें और आई उनसे प्यार कर बैठी। बाबा भी तब उनकी बहुत परवाह करते थे। आपसी सहमति से दोनों ने शादी कर ली और बाबा आई के साथ उन्हीं के घर में रहने लगे। एक एम्प्लॉई से सीधे मालिक बन गए, सब कुछ उनके कंट्रोल में था। शुरू में तो सब ठीक था पर धीरे धीरे बाबा का बिहेवियर बदलने लगा। आई ने डायरी में लिखा था कि वो प्यार और परवाह जिनके लिए उन्होंने बाबा से शादी की वो सब शादी के बाद खत्म हो गया। बाबा के पास उनके लिए टाइम ही नहीं होता था। उनके शादी के बाद आई के चाचा चाची गुस्से में चले गए थे। बाबा से उनका रिश्ता अजीब सा हो गया था। जब उनका दिल करता उनके करीब आते, अपनी इच्छा पूरी करते और उसके बाद आई को देखते भी नहीं थे। आई कुछ कहती तो कहते कि काम का बहुत प्रेशर है। आई ने बहुत कोशिश की उन्हें समझने और अपने रिश्ते को बचाने की। एक दिन बाबा अचानक कहीं गायब हो गए और जब लौटे तो बिल्कुल ही बदल गए थे। शराब पीने लगे थे, रात रात भर घर से बाहर रहते। आई सवाल करती तो उन्हें इग्नोर कर देते, जैसे उनकी नज़रों में अब आई का कोई वजूद ही नहीं रह गया था। इसी बीच आई को मेरे आने की खबर मिली। वो खुश थी पर बाबा खुश नहीं थे। मैं दुनिया में आ गई पर कुछ भी नहीं बदला। बाबा को तो हम दोनों से कोई मतलब ही नहीं था, ना उन्हें आई से प्यार था और ना मुझसे लगाव, वो अपनी ही दुनिया में रहते थे। आई को काफ़ी बाद में पता चला कि बाबा ने धोखे से उनसे सब कुछ अपने नाम करवा लिया था और अब उनकी आधी प्रॉपर्टी अपनी जुए और शराब की लत में बेच चुके थे। आई बाबा की बहुत लड़ाई हुई और उसके बाद ये रोज का हो गया। बाबा शराब पीकर आते, आई के साथ जोर जबरदस्ती करते, दोनों की लड़ाई होती, गुस्से में बाबा उन्हें मारते थे और मैं अगर बीच में आती तो मुझ पर भी रहम नहीं करते थे। पता नहीं किस बात का गुस्सा वो आई पर निकालते थे और आई सब बर्दाश्त करती सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि उनके पास जो भी था वो सब उनसे छिन चुका था और वो जानती थी कि अगर वो बाबा को डिवोर्स देकर अलग हो भी जाती तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। कोर्ट्स में लड़ने के उनके पास पैसे नहीं थे और ना ही ये साबित करने के लिए सबूत थे कि बाबा ने सब धोखे से अपने नाम करवाया है। उस वक्त तक ज्यादा कुछ बचा भी नहीं था, किसी से मदद तो मिलते नहीं, उल्टा जिन लोगों के खिलाफ जाकर उन्होंने बाबा से शादी की थी उन्हें सुनाने का मौका मिल जाता और मेरे साथ वो दरबदर की ठोकरें नहीं खाना चाहती थी। मैं 6 साल की थी, मुझे आज भी वो दिन याद है जब बाबा नशे में धोत एक औरत को अपने साथ घर ले आए थे। उस दिन आई का सब्र जवाब दे गया था, उन्होंने सब कुछ सहा था, जिस आदमी से कभी प्यार किया था उसकी सारी ज्यादती बर्दाश्त की थी, लेकिन ये नहीं सह सकी कि उनका पति बाहर अवैध संबंध बना रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है और अब बाहर से औरत घर लाने लगा है। उस रात पूरी रात दोनों की लड़ाई हुई और सुबह गुस्से में बाबा ने मुझे और आई को घर से निकाल दिया। 2 दिन हम उसी घर के बाहर रहे, लेकिन ना बाबा बाहर आए और ना हमें अंदर आने दिया। आई तो मुझे लेकर वहां से चली भी गई थी, पर अकेली औरत, वो भी खूबसूरत और जवान, उसके साथ एक प्यारी सी बच्ची, हर तरफ हैवान नजरें गड़ाए बैठे थे जो बस मौके के इंतजार में थे। उनसे बचते हुए और मुझे उनकी गंदी नजरों से बचाते हुए आई एक बार फिर उसी दरवाजे पर पहुंच गई जहां से हमें जलील करके थक्के देकर बाहर निकाला गया था। वो आई का घर था और उन्हें ही अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। 2 दिन बाद बाबा आए और हमें अंदर लेकर गए, इस शर्त पर कि आई उनकी जिंदगी में दखल नहीं देंगी। आई मान गई क्योंकि वो जगह जैसी भी थी, वहां उन्हें कितना ही दुख मिला हो, लेकिन वहां वो और उनकी बेटी महफूज थे।
मेरी आई बहुत कमजोर थी, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने हक के लिए लड़ने की। उनके आई बाबा ने कभी उनका सामना किसी मुश्किल से होने ही नहीं दिया था, इसलिए जब किस्मत की ठोकरें लगी तो वो अंदर ही अंदर टूटती चली गईं। उस दिन के बाद से आई बाबा बिल्कुल अजनबी बन गए। बाबा कब जाते, कहाँ रहते, क्या करते, किसके साथ रात गुजारते, कब घर आते, आई कुछ नहीं पूछती थी, कुछ कहती नहीं थी, बस रोती थी अपनी बेबसी और ख़राब नसीब पर। गलत इंसान से प्यार करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली थी, पर उसे छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि उन पर मेरी जिम्मेदारी थी। घुट घुट कर जी रही थी वो, पल पल अंदर से टूटती जा रही थी, मौत के करीब जा रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं था। एक दिन आई चली गई मुझे अकेला छोड़कर। उस दिन उन्होंने नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। शायद उनके लिए उस दर्द और जिल्लत भरी जिंदगी के बोझ को और ढोना नामुमकिन हो गया था, इसलिए उन्होंने खुद को मुक्ति दे दी और मैं सिर्फ देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। इनाया की आंखें सुर्ख रंग में रंगी थीं, दर्द आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, उसका गला भराया था और वो सिसक रही थी। उसे इस कदर दर्द में देखकर कायरव तड़प उठा। टू बी कंटिन्यूड।